नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे, दो वीक से आप भगवान के पवित्र नामों की महिमा दो वीक से सुनते आए ना। तो अभी अभी इसको हमने पूरे विश्व में एक उत्सव मनाया था, वर्ल्ड होली नेम जो उत्सव था, जिसमें पूरे विश्व में सब भक्त मिलकर अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे थे, हरि नाम संकीर्तन निकाल रहे थे, पर्सनली अधिक से अधिक मालाओं का जप कर रहे थे। तो ये सब कलयुग का जो परम धर्म है उसको और बढ़ाने के लिए ये नाम महिमा का जो उच्चारण है पूरे विश्व में हो रहा था। तो आज हम उसी नाम के जो महान आचार्य हैं श्रील हरिदास ठाकुर, उनके बारे में चैतन्य चरितमृत से रीडिंग करेंगे। तो आप रेगुलरली भगवद गीता से मेन मेन श्लोकों पर चर्चा सुनते हैं। तो भगवद गीता का ये जो 10वां अध्याय है श्री भगवान का ऐश्वर्य, तो उसका जो 9वां श्लोक है वो आज के लिए है, जो मैं पढ़ता हूँ। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो 4 श्लोकाज हैं, 8, 9, 10, 11, ये भगवद गीता का सार है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो भगवद गीता का जो इसेंस है, एक प्रकार से सार है, वो इन श्लोकों में भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो हम सबको कम से कम ये 4 श्लोक याद हो जाने चाहिए। किसको याद है कुछ श्लोक जिसमें से? एक श्लोक प्रभु जी को तो सारे श्लोक याद है। आप में से किसी को माता जी को याद है? तो आप प्रयास कीजिए कि इन श्लोकों को कम से कम हम याद करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारी वाणी को मीठा बनाना है, वाणी की स्वीटनेस को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? स्वीट्स खाने होंगे? नहीं, शास्त्र कहते हैं ये जो शास्त्रों के श्लोक प्रार्थनाएं हैं उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? आपके वाणी की मिठास बढ़ती रहेगी, है कि नहीं? तो इसलिए यह आवश्यक है कि अपने बच्चों को भी बचपन से इन श्लोकों का, इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। हम देखते हैं कि लोगों की इतनी वाणी बहुत कर्कश है, तो अपनी वाणी को भी सुधारना है तो हमें इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति जो भगवद गीता का अध्ययन करता है, भगवद गीता के अध्ययन में रत है, जो इनका उच्चारण करता है वो मुझे अधिक प्रिय भी है। और बुद्धि के माध्यम से भी वो मेरी उपासना कर रहा है। किसके माध्यम से? बुद्धि के द्वारा वो मेरी उपासना कर रहा है। तो ये श्लोक बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत सारी चीजें इस श्लोक में दी है। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के शिक्षा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान के जो शुद्ध भक्त है उस शुद्ध भक्त के लक्षणों का वर्णन हुआ है। कौन शुद्ध भक्त है तो उसके लक्षण हमें पता होने चाहिए। तो लक्षण हमें प्राप्त होते हैं इस श्लोक के माध्यम से। और दूसरी चीज श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये भगवान के प्रति की जाने वाली जो रागानुगा भक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। दो प्रकार का भगवत भक्ति है, एक है वैधि भक्ति जिसे विधि भक्ति कहा जाता है। विधि का मतलब है विधि विधानों का पालन करना। जो भी हम विधि विधानों का पालन करते भगवत भक्ति में शुरुआत के समय में वो परम आवश्यक है, उसको विधि या वैधि साधना भक्ति कहा गया है। और फिर वो विधि विधानों का पालन करते करते हमारे अंदर भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम उच्चारण, श्रवण कीर्तन करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। हमें कोई SMS आने की आवश्यकता नहीं होती, कोई फोन करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें रहा नहीं जाता, भगवान की ओर दौड़ते हैं हम, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में पढ़ने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। ये क्या होता है? स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक वैसे ही है जैसे इसी श्लोक के तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जैसे एक युवक का आकर्षण एक युवती से स्वाभाविक हो जाता है। जब आपस में उनका प्रीति होता है तो उनका आकर्षण क्या होता है? स्वाभाविक होता है, वो एक दूसरे से रह नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम भगवत भक्ति में उन्नति करते हैं रागानुगा, तो स्वाभाविक हमारे लिए ये भगवत भजन हो जाता है, जिससे हमें किसी पुशिंग की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है? पुश करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें उस धरातल तक उठना होगा कि हमें कोई फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हमें कोई इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो उस धरातल तक हमें आना होगा। तो इसलिए वो कहते हैं, और एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक बताता है कि भगवत भक्ति की प्रोसेस क्या है, भगवत भक्ति को कैसे करना चाहिए। तो भगवत भक्ति की जो प्रोसेस है वो इसमें दी गई है। क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो है कि एक शुद्ध भक्त के लक्षण है कि शुद्ध भक्त कौन है। कौन है शुद्ध भक्त? मच्चित्ता। सबसे पहले क्या बोला है भगवान ने? मच्चित्ता। भगवान कहते हैं उसका जो चित्त है वो मुझमें रमा रहता है या मुझमें पूर्ण रूपेण लगा होता है। तो भगवद गीता में कृष्ण हमसे किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो वो केवल हमारे चित्त को मांगते हैं। इसलिए गीता में कई जगहों में आया है, मन मना भव मत भक्तो, अरे अर्जुन तुम्हारा मन मुझे दे दो। भगवान गीता के शुरुआत में, मध्य में और भगवद गीता के आखिरी जो कंक्लूडिंग उपदेश दे रहे हैं उस स्थान में भी भगवान हमसे एक ही चीज को मांग रहे फिर से। क्या है? मन मना भव, मेरे मन माला हो, या आपका मन मुझे दे दो, या आपका मन मुझमें लगाओ। तो इस प्रकार से भगवान, तो जब भगवान इस चीज की डिमांड करते हैं, मन जब हम कृष्ण को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी सारी इंद्रियां भी किसकी सेवा में नियुक्त होती है? भगवान की सेवा में। जैसे कोई राजा है, मन शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। हमारा दुखों का कारण इस जगत में यही है कि हम अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने में पागल की तरह लगे हैं। और इन 5 इंद्रियों का जो राजा है वो कौन है? मन, वो भी बहुत अधिक पागल है। तो पूरा जीवन हम इस इंद्रियों के तर्पण में गवाते हैं। आंखें कुछ सौंदर्य को देखना चाहती है, स्किन कुछ और स्पर्श करना चाहती है दूसरे स्किन का, और कान मधुर भौतिक संगीत आदि को सुनना चाहते हैं, जिह्वा कई प्रकार के स्वाद लालायित रहते हैं, हम भागते खाने के लिए कई कई स्थानों में, केवल किस लिए? जिह्वा की पूर्ति के लिए। तो वैसे ही नाग में सुंदर सुगंध या जो सुगंध सूंघना चाहती है, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब आपका ये जो मन मुझको दोगे तो ये सारी इंद्रियां भी क्या होगी, मेरी सेवा में लगेगी। तो भक्ति का मतलब क्या है? ऋषि कहना ऋषि केश सेवनम भक्ति रुचते, सरल है। कोई कहे कि भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के स्वामी है, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रिया, येश मतलब कंट्रोलर या स्वामी नियंता। तो जो इंद्रियों के स्वामी है जिनका नाम ऋषिकेश है, उनकी सेवा में इन इंद्रियों को नियुक्त करना अनुकूल भावना से फेवरेबल वे में, वो है भक्ति। इन इंद्रियों को जब हम अपनी सेवा में यूज करते हैं तो वो काम है। आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा तारबले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम। जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम इन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम वासना है, काम है। और उन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल हम कृष्ण के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, आंखों से उनके सौंदर्य को निहारते हैं, आंखों से उनके भक्तों का दर्शन करते हैं, धाम में जाके उनके लीला स्थलियों को देखते हैं, कानों से भगवान की कीर्तन उनकी कथाओं को उनके नाम को निरंतर सुनते हैं, जिह्वा से कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, जिह्वा से उनका गुणगान निरंतर करते हैं, नाक से भगवान को अर्पित की गई तुलसी और फूल को सूंघते हैं या उनको गले में धारण करते हैं, हाथों से करताल मृदंग बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो यह क्या है? भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल। भगवान के लिए हाथों से माला बनाना, भगवान की जो तुलसी है उसका टेक केयर करना, कितनी सारी चीजें, भगवान के लिए भोगा कई प्रकार के व्यंजन कुक करना, इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं अनुकूल भावना से, तो वो भगवत भक्ति है। इसलिए भगवान हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप मुझे अपना मन दे दो। तो जब हम अपना मन भगवान को सरेंडर करते हैं तो फिर भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन के रथ को क्यों हाँक रहे भगवान, हमारे रथ को क्यों नहीं चलाने के लिए आते भगवान? अर्जुन ने आमारा बलिते के छो आर के छो ना है। अर्जुन की भावना क्या थी कि हे कृष्णा, मेरा अपना कहने योग्य कोई और चीज मेरे पास नहीं है, मैंने अपना मन मेरा अपना शरीर मेरा राज्य सब कुछ क्या किया है, आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। अब अर्जुन और ये पांडव भगवान के प्रति पूर्ण रूपे न समर्पित हो गए, और जिसके कारण उनकी जो आगे बढ़ने की जो आगे बढ़ोतरी जो है वो कृष्ण ने अपने हाथ में ले ली, उनका जो जीवन का लक्ष्य है, और कृष्ण उनके क्या बने? सारथी बने। इतना सरल है। जब हम क्योंकि जब हम कृष्ण को अपना मन देते, जैसे राजा अमरीश महाराज थे, इतने महान राजा, उन्होंने उनका वर्णन आता है कि उन्होंने अपने घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखे भगवान की सेवा के लिए। लोग क्या करते, बहुत धनाढ्य लोग होते हैं, घर में मंदिर बनाएंगे, राधा कृष्ण भी रखेंगे, लेकिन उनकी पूजा सेवा करने के लिए कौन रखेंगे? किराए में पुजारी रखेंगे, किराए में ब्राह्मण रखेंगे। तो ये नहीं है। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? हमें स्वयं लगना चाहिए, अपने शरीर को लगाओ। ये जो शरीर है ये कैसे है? ये शरीर जब कृष्ण की सेवा में लग के झिझने लगता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे चंदन की लकड़ी है उसको घिसते हैं, जितना घिसोगे उसका सुगंध और बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये शरीर भी ये घिस रहा है भौतिक माया की सेवा में, इससे बदबू निकलने वाली है। शरीर में जितने सारे कॉस्मेटिक्स हम लगाए, सौंदर्य के अलग अलग वस्त्र धारण करें, ये शरीर निकल क्या देने वाला है? गंध ही छोड़ता है कि नहीं? शरीर में गंध है, दुर्गुण है, वो वही चीज प्रदान करेगा। लेकिन जब ये शरीर को आप कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो ये चंदन की लकड़ी के समान है, और इसको जैसे घिसते रहोगे तो इसकी क्या होगी? सुगंध आएगी और महकने लगेगा, मतलब कि इसके द्वारा सारे जो जीव है लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद अपने 70 साल की आयु में, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद इस श्लोक के आइडियल उदाहरण है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जीवन में, हाँ जब वो अमेरिका में थे, उन्होंने कहा बचपन से मेरे जीवन में ऐसा एक क्षण भी नहीं था कि मैं कृष्ण को कभी भूला होऊंगा, नहीं। उन्होंने कहा एक क्षण भी नहीं मेरे जीवन में आया कि मैं जिस समय कृष्ण को भूला हूं, हमेशा कृष्ण के स्मरण में था। चाहे वो कहते हैं मेरा बचपन वैसे ही गया, जब मैं, हम प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब बहुत ही छोटा था तो अपने सिस्टर और हम सोते थे सुबह सुबह, तो मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करते थे। जब वो घंटी बजाते थे विग्रह की सेवा के लिए, तो उस घंटी की आवाज से हम उठते थे। किसकी आवाज से? अब देखो कितना महत्वपूर्ण है माता पिता का कर्तव्य कि बच्चों के ऊपर कौन से संस्कार डाले जा सकते हैं। हम सुबह उठते फिल्मी गाने लगाते हैं, खुद माया के नौकर बने हुए हैं और बच्चों को भी क्या कर रहे हैं, उसी संस्कार दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने जो कृष्ण भावना प्राप्त की है उसमें मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने वास्तव में मेरे जीवन में राधा कृष्ण की सेवा हमें प्रदान की। उन्होंने कहा मैं जब स्कूल में जाने लगा तो मेरी सिस्टर और मुझे उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह दिए, उनकी सेवा करना सिखाया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय भी मैं उनकी सेवा करता रहता था। इस प्रकार से प्रभुपाद पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते थे बचपन से ही, और वो कृष्ण को कभी भूले नहीं। ऐसा कोई समय नहीं आया जब उनका मन कृष्ण की सेवा से या कृष्ण भावना से अलग हुआ हो। जैसे इस श्लोक में वो कहते हैं मत चित्ता, जिनका मन मुझ में रमा रहता है। और हमारे मन की दुर्दशा हम देखे तो क्या है, हमारा मन किसमें रमवान हो रहता है रोज। यदि हम सोचे कि दिन के 24 घंटे में कृष्ण में कितना समय मेरा मन लगता है, देखे तो हम ना के बराबर है। तो इसलिए शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि उसका मन उस दीप की भांति होता है, दिया होता है जो कैसे एक जैसा जलता है ना। हवा आज हवा वगैरह आती है तो कई दिए बुझ सकते हैं या हिल सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के जीवन में कितनी ही विपदा क्यों ना आ जाए, कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, शारीरिक, मानसिक या फिर भौतिक, किसी भी प्रकार की विपदा उसके जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी वो जो उसका जो कृष्ण स्मरण है वो खंडित नहीं होता। वो कैसे बना रहता है? उस दीप की भांति जो निरंतर एक जैसी वो दीप की शिखा जलती रहती है। जैसे हरिदास ठाकुर, श्रील हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम थे जन से, लेकिन वो निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे। और जब मुस्लिम शासक को पता चला, मुस्लिम एक काजी था जो बहुत अधिक उनसे द्वेष रखता था, उन्होंने कहा ये मुस्लिम होकर हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उनको दंडित देने के लिए उनको पकड़ा और कहा कि आप इस भगवान के नामों का, हिंदुओं के भगवान के नामों का क्या करो, उच्चारण करना बंद करो। तो उन्होंने कहा भगवान तो एक ही है, चाहे वो अल्लाह हो, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जो उन्होंने काफी चीजें उनको कही और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ऐसे मानेगा नहीं, इसको क्या करना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, मारना चाहिए अधिक से अधिक, तभी ये भगवान के नामों को छोड़ सकता है उच्चारण करना। तो वो जो शासक थे, मुस्लिम शासक, हरिदास ठाकुर को दंड देते हैं। कौन सा दंड? 22 बाजार में कोड़ों से मारने का दंड। तो उनको ले जाया जाता है 22 बाजारों में, अलग अलग मार्केट्स में ले जाया जाता है और उनको कोड़ों से पिटाया जाता है मल्लों के द्वारा। और जब उनको मारा जा रहा था तो उनके हृदय में जो मार रहे थे या जिनके द्वारा उनको दंड प्राप्त हो रहा था, उनके प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या या द्वेष या घृणा
या फिर घृणा की भावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा वो केवल एक प्रार्थना कर रहे थे, उनको इतना मारा जा रहा था, वो कृष्ण को कह रहे थे कि हे कृष्णा, ये लोग नहीं जानते, ये अज्ञानी है, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, लेकिन आप इनको क्या करो, क्षमा करो। इतना बड़ा भाव एक भक्त का होता है। इसलिए भक्त का एक लक्षण क्या है कि वो अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु होता नहीं है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। अजात शत्रवा शांतः साधवा साधु भूषणा, साधु का ये आभूषण है क्या कि उसका कोई शत्रु नहीं होता। कोई दूसरा व्यक्ति उसे शत्रु मान ले तो ठीक है, लेकिन वो कभी किसी का शत्रु नहीं होता। वो हमेशा दूसरों पर उपकार करने की भावना रखता है, हमेशा दूसरों की सेवा में रत रखता है, चाहे जो हो जाए। जैसे महाराष्ट्र में एक संत थे, संत एकनाथ, उनके बारे में आप सुनते हैं। हाँ, जब वो गंगा गोदावरी स्नान करने गए तो वहां एक बिच्छू देखा उन्होंने, क्या हो रहा था, डूब रहा था। उन्होंने उसको पानी से ऊपर उठा के सोचा बाहर ले जाओ। उन्होंने उठाने का प्रयास किया, लेकिन बिच्छू का स्वभाव क्या है, काटना। बिच्छू के समान हम लोग हैं, है कि नहीं। कोई भक्त आपको प्रोग्राम में बुलाता है, कथा में कथा के लिए प्रचार करता है, तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में भक्तों को डंक मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉमेंट्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, तो बिच्छू के जैसी हमारी स्थिति है। तो जब उस साधु ने एकनाथ, संत एकनाथ ने उनको उठाया तो डंक मारता था और हाथ से गिर जाता था, और फिर से वो उठाते थे, फिर से गिर जाता था। तो एक व्यक्ति कब से देख रहा था वह तट से, अरे क्या हो रहा है, छोड़ दो ना उसे, क्यों इतना, छोड़ दो उसे, छोड़कर स्नान करके बाहर आ जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो उस बिच्छू का स्वभाव है, उसी प्रकार से मेरा भी स्वभाव क्या है, उसको बचाना, साधु का ये स्वभाव है। तो उसी प्रकार से साधु जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव जीवों के हितैषी होते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर जो गुण है सूरदम सर्वभूतानाम, वही भावना उनके भक्तों के अंदर होती है। वो भी सारे जगत के हितैषी होते हैं, वो ही सारे जगत के सुरूद या मित्र होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ हरिदास ठाकुर वो भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये लोग मुझे मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसकी इसका परिणाम क्या है, तो आप इनको क्या करो, क्षमा करो। तो ऐसे हरिदास ठाकुर को जब मारा जा रहा था, क्यों मारा जा रहा था, क्योंकि वो क्या जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, भगवान के नामों का जप कर रहे थे। और अभी हमारे जीवन में कष्ट है, हमें कोई कह रहा है कि भगवान के नामों का उच्चारण मत करो, लेकिन हमारी जीभ इतनी मोटी हो गई है, वो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती। कितने लोग है रोज माला करते हैं, हाथों पर खींचे, बहुत कम है कि नहीं। सबको क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि ये जिह्वा फाइनली ये जिह्वा जलने वाली है, जलने वाली है कि नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय जब हमें चिता पर रखा जाता है मृत देह को, तो आग जल लगाई जाती है, कहा मुंह पर आग लगाते हैं, सबसे पहले क्या जले, ये जिह्वा जलाते हैं। तो वो जलने से पहले शास्त्र में वर्णन आया है कि इस जिह्वा को अधिक से अधिक भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित कराना चाहिए। इसलिए शास्त्र में प्रार्थना आई है कि हे मेरे जीव, मैं तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बिल्व मंगल ठाकुर अपने जीव के लिए कई सारे श्लोकाज लिखते, प्रार्थना, जिह्वे पिबस्वम हरि नामम देहम गोविंद दामोदर माधवेति, हे मेरी जिह्वा, तुम गोविंद दामोदर माधव के नामों को पीते रहो, ये नाम शहद से भी अधिक मीठे हैं, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा जलना, तुम्हारा विनाश होना निश्चित है। तो इसलिए उस समय जीव बोलेगी नहीं। आप देखो जब हम किसी कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो क्या बोला जाता है हमेशा, हाँ राम नाम है कि नहीं। ये नॉर्थ में बोलते हैं, वहां बाकी प्लेसेस में तो बहुत कम बोलते हैं लोग, लेकिन जनरली बोला जाता है राम नाम सत्य है। सब लोग उस समय बोलते हैं कि हाँ राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, लेकिन एक व्यक्ति लेटा रहता है जिसको ले जाया जाता है, वो गर्दन हिलाता कहता है नहीं मेरे लिए अभी उसका टाइम चला गया है। उसकी गर्दन हिलती है कि नहीं हिलती, आप देखा कि नहीं, किसी को आप ले जाते हैं मृतदेह को तो लोग चार लोग चलते तो हिलता रहता है शरीर, तो उसमें से उसकी गर्दन भी हिलती है, तो वो कहता है मेरे लिए सत्य नहीं है आप लोगों के लिए है। तो हमारी भी वो गति होने वाली है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, घर को आग लगने से पहले ही घर के पास कुआं खोद के रखता है ना, वो सिचुएशन आने से पहले ही उसका अभ्यास करो भगवान के नामों का उच्चारण करने का। श्रील प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में कहते हैं ऐसा जो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान के नामों का स्मरण करने का अभ्यास नहीं किया है उस व्यक्ति को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना असंभव है। अभ्यास है न, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृहते, कि अर्जुन अभ्यास करो। तो ऐसे हरिदास ठाकुर निरंतर भगवान के नामों का जप कर रहे थे और इतना शारीरिक उनके ऊपर प्रहार हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इतने फिक्स थे, उनका मन कृष्ण से विचलित नहीं हुआ। ये उन्नत भक्त का लक्षण है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा खंड खंड हो जदे जाओ मोरा प्राण तबुतना आमी वदने छाड़ी हरि नाम। उन्होंने कहा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी मैं अपने मुख से कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना छोड़ूंगा नहीं। देखो कितनी निष्ठा है, कितनी निष्ठा है कि नहीं। भगवान ऐसी दृढ़ भावना को देखते हैं, तो ऐसी दृढ़ भावना भगवत भक्ति करने के लिए हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो भगवान आपके हो जाते, भगवान उस भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस संसार का ऐश्वर्य आदि क्या है जिसके लिए व्यक्ति दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है ऐश्वर्य धन अर्जन करने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में अपना जीवन दे देता है उसके लिए कृष्ण अपने सारे छह ऐश्वर्य के साथ उस भक्त की सेवा करते हैं। कितने ऐश्वर्य के साथ, अब सोचो श्रील प्रभुपाद थे 70 साल की आयु में, हम लोग पूरा जीवन बिताते हैं कुछ कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतने समर्पित थे हरिदास ठाकुर की तरह कृष्ण की सेवा में 70, और बल्कि ऐसे नहीं कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तभी उन्होंने कृष्ण की सेवा की, नहीं, जब वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसके बाद उन्होंने विवाह किया तो उनका लखनऊ में फैक्ट्री आदि था, बहुत सारी चीजें, जब तभी भी कृष्ण की सेवा में वो उतने ही समर्पित थे, उतने ही तत्पर थे, और एक चीज के लिए वो बहुत पक्के थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा है इस कृष्ण भावना का प्रचार करो, कृष्ण भावना को कहां ले जाओ, विदेश में ले जाओ, हर जीवन तक पहुंचाओ। उस इच्छा को अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने आप को क्या डाल दिया, समर्पित किया, और केवल एक इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद तो उस समय जब वो गए अमेरिका 40 रुपए के साथ बूढ़ी आयु में, कोई उनकी टेक केयर करने वाला नहीं है, कोई उनको 3 टाइम का भोजन देने वाला नहीं है, वहां उनको ये भी पता नहीं कि मुझे लंच में क्या होगा, डिनर प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ से उनको अपना कुकर ले जाना पड़ा। आप कभी जाते हो कुकर लेके ट्रैवलिंग में, सब चीजें वो खुद ले गए और खुद उनको कुकिंग करना पड़ता था, और वहां जब पहुंचे 40 रुपए थे, और जैसे स्लम होता है ना भारत में, लोग स्लम में रहते हैं, वैसा बावरी स्ट्रीट है, वहां बावरी एरिया है, तो वहां वो रहा करते थे। वहां रहते हुए कृष्ण की सेवा में नियुक्त हुए
तो भगवान ने देखा इतनी सिंसियर डिजायर और इतने सीरियस है मेरे भजन में, मेरी सेवा में, तो भगवान ने क्या किया, उनको सारी सुविधाएं प्रदान की, सारे जगत का ऐश्वर्य दे दिया। हाँ, भगवान अपने 6 ऐश्वर्य के साथ उनकी सेवा में आ गए। प्रभुपाद ने अपने 10 साल में ही 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की, 100 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया, हजारों अलग अलग वर्ल्ड के कई सारे देशों में हजारों भक्त बनाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पूर्ण रूपेण भगवान के नाम के प्रति समर्पित होता है तो भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, या अपने आप को भगवान उसे प्रदान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण, मच्चित्ता कि जिनका मन सदैव मुझे मुझ में रमा रहता है, और कोई भी चीज इस संसार की ऐसी नहीं है जो उनके चित्त को या उनके मन को या उनके हृदय को कृष्ण से अलग कर सके। कोई भी ऐसा भौतिक आकर्षण नहीं है जो भगवान से उनके चित्त को अलग कर सके, ये एक विशेष लक्षण है। वो आगे कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। मतलब मदगत प्राणा मतलब वो मेरी सेवा में अपना प्राण भी देने के लिए तैयार है। सरल रूप से देखे हम संसार में, भौतिक संसार में कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए प्राण देने के लिए तत्पर होती है, ये आजकल तो नहीं होती है कि नहीं। तलाक आ गया आजकल, क्या आ गया है, इजी वे टू गेट, इससे मुक्त होने का सरल उपाय आ गया है। तो यहाँ शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो कृष्ण की सेवा के लिए अपना प्राण भी समर्पित करता है पूर्ण रूपेण। मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। और तीसरी चीज क्या है कि ऐसे शुद्ध भक्त आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बोध देते हैं, बोध दिलाते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और निरंतर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वो सबसे अधिक आनंद अनुभव करते हैं किस चीज में, मेरे बारे में निरंतर चर्चा करने में। ये भगवान वो कहते हैं। तो वास्तव में हम यदि इस संसार में परम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं या परम संतुष्टि अनुभव करना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा, क्या, भक्तों के संग में आकर भक्तों के बीच में एक दूसरे को बोध प्रदान करते हुए कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हुए कृष्ण के बारे में निरंतर चर्चा करनी होगी। और यही वास्तव में क्या है, साधु संघ है। साधु संघ का मतलब है कि भक्त एकत्रित आते हैं और जिनके चर्चा का विषय कौन होता है, कृष्ण होता है। तो जो गोपियां हैं वो जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वो कृष्ण के विरह में एकत्रित होते थे और वो सोचते थे कि कृष्ण चले गए हैं मथुरा, हमें वो निष्ठुर है, हम वो हमें छोड़ के चले गए, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम भूल जाएंगे। तो जब ऐसा कहते थे कि हम अभी भूलते हैं, उनकी चर्चा मत करो, वो ऐसा कहते कहते इतनी अधिक कृष्ण की चर्चा करते हैं कि कहीं पूरा दिन बीत जाता और वो सोचते कि हमने क्यों कृष्ण की चर्चा की। तो ये वास्तव में कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो हमें भी जीवन में कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जब लंदन गए 1977 में, आखिरी उनका विजिट था, वहां फाइनल डे थे उनके और बहुत बीमार हो गए थे, तो बहुत सारे इंडियंस उनको दर्शन करने के लिए आए श्रील प्रभुपाद का। और जनरली हम साधुओं का दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए आशीर्वाद, क्योंकि जनरली व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में इतनी विपदाएं हैं, साधुओं का आशीर्वाद या उनकी कृपा मिले तो मेरा जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद क्या सोचते हैं वो, कि भौतिक
जो कष्ट है मेरे जीवन में उससे मुझे रिलीफ मिल जाए। जैसे प्रभुपाद एक बार ट्रेन से अमृतसर से कलकत्ता जा रहे थे, हाँ, तो जब जा रहे थे तो उनके साथ दो अमेरिकन उनके शिष्य थे। तो जब कुछ लोगों को पता चला कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है वो हमारे पड़ोस के उसमें ही है, बोगी में है, तो ऐसे दो इंडियंस उनको मिलने के लिए गए। सोचा इतने बड़े संत का हमें क्या लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद। तो कुछ गुरु होते हैं जिनको कहा जाता है आशीर्वाद गुरु। कौन से गुरु? सदैव अपना हाथ ऊपर करके बैठे रहते हैं, लोग आए और उनसे आशीर्वाद ले। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु थे जिनका नाम था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो सुबह सुबह नवद्वीप में कई सारे लोग उनके पास आते थे उनके चरण छूने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये क्या करते थे, सुबह होते ही बड़ा सा कपड़ा लेते थे और अपने पांवों को लपेट देते थे और वो दूर से कहते थे आशीर्वाद देने वाले बहुत सारे गुरु हैं, उनके पास जाओ, मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूं। तो वास्तविक क्या आशीर्वाद है भगवान के भक्तों का और क्या ब्लेसिंग्स है वो हमें जानना चाहिए। वास्तविक ब्लेसिंग्स क्या है किसी गुरु वैष्णव आचार्य या साधु के, कि उनके मुख से निकली हुई वाणी को श्रवण करना और उनके दिए हुए उपदेशों का अपने जीवन में पालन करना, यही असली आशीर्वाद या ब्लेसिंग है। बाकी सारी चीजें धोखा है। क्या है? धोखा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आप धोखा खाना चाहते हो तो आपको धोखा देने वाले लोग जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये संसार धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों से भरा पड़ा है। तो वैसे ही प्रभुपाद जब प्रेम में थे तो दो इंडियंस आए और उनके जहां वो बैठे थे वहां जाना चाह रहे थे, तो उनके शिष्यों ने सोचा इनको रोक देते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास एसी का कंपार्टमेंट होता है तो क्लोज होता है ना, तो एक रूम सा बना होता है। तो वो दो शिष्य और प्रभुपाद बैठे थे, तो ये दोनों आए। तो शिष्यों ने हमेशा, उनको पता था कि इंडियंस लोग ना हमेशा तंग करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा इनको अंदर आने नहीं देंगे हम। तो उन्होंने अपना जोर लगाया कि ये दो इंडियंस को अंदर आने नहीं देंगे, वो अमेरिकन्स थे। तो लेकिन इंडियंस तो आप जानते ही हैं, उनको रोकना बड़ा कठिन है। एक ने तो अपना मुंह दरवाजे से अंदर डाल दिया, घुसा दिया कैसे तो, और प्रभुपाद ने देखा। अभी प्रभुपाद ने देखा तो मना नहीं कर सकते, कोई मिलने आ रहा है आपने कि देखा और आप अनदेखा करें, ऐसे नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है उनको आने दो। अभी प्रभुपाद को लगा कि रियली ये बहुत उत्कंठित है, बहुत उत्साहित है, सही में कुछ चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे वो आए प्रभुपाद के आगे बैठे तो प्रभुपाद ने पूछा बताइए क्या क्या आपका प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को तो इतना प्रचार कर दिया है, जहां जाओ वहां ये हरे कृष्ण शब्द सुनाई देता है। कौन सा शब्द सुनाई देता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मैंने नहीं किया है, ये वास्तव में कृष्ण की योजना है। प्रभुपाद कभी अपने आप को श्रेय नहीं लेते थे कि मैंने किया, वो कहते थे ये मेरे गुरु महाराज के द्वारा हुआ है, कृष्ण के द्वारा हुआ है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। उन्होंने कहा बताइए क्या ब्लेसिंग चाहिए मेरी। तो उन्होंने कहा एक इंडियन बैठा था, उसने अपना हाथ घुटने पर रखा, कहा स्वामी जी पिछले 6 महीने से मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा है, सारे डॉक्टर्स हकीम वैद्य सबको दिखा दिखा के थक गया, आपका आशीर्वाद होगा तो मेरा घुटना क्या हो जाए, ठीक हो जाए। प्रभुपाद ने अपने सर में हाथ लगाया और उनके शिष्य भी चमत्कृत हो गए। उन्होंने कहा, फिर वो लोग प्रभुपाद ने कहा कि मेरा रियली ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, मेरा असली आशीर्वाद चाहते हो, तो उनके दो अमेरिकन शिष्य वहां खड़े थे जिन्होंने सुंदर तिलक धारण किया था, कंठी धारण की थी, वैष्णव वेशभूषा धोती कुर्ता पहना था, कृष्ण के नामों का कीर्तन करते थे, गुरु और कृष्ण की सेवा में नियुक्त थे, तो उनकी ओर हाथ करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो यह है, आप क्या करो, ऐसे बनो। कैसे बनो? भगवान के भक्त बनो। तो वो जैसे सुना भक्त बनो भाग गए। हमारी ऐसी स्थिति है, हमें अपने जीवन में इतनी समस्याएं हैं, पत्नी का प्रॉब्लम, तो बच्चों का प्रॉब्लम, तो पड़ोसी का प्रॉब्लम, तो रिश्तेदार का प्रॉब्लम, तो ऑफिस में प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम, तो मन का प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है, और हम ऐसे प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन सारी समस्याओं का निदान क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना, और वो शरण हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी स्थिति वैसी ही है, मछली ठीक रह सकती है पानी में, लेकिन पागल मछली सोचती है कि मैं थम्सअप के पानी में रहूंगी तो ठीक रहूंगी, मैं चेयर में बैठूंगी तो ठीक रहूंगी, मैं मेट्रो में घूमूंगी तो अच्छा होगा। ऐसी मछली जितना मर्जी पानी से बाहर आकर दिल्ली में जितना मर्जी एंजॉयमेंट करे, वो सुखी हो सकती है? नहीं। एक ही सॉल्यूशन है उसके लिए, बहुत आनंद के साथ डुबकी लगाओ पानी में। वैसे ही हम बाकी सारा प्रयास कर रहे हैं, हर प्रकार से अपना पसीना निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज हम नहीं करना चाहते, जो बल्कि हमारे बहुत करीब है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भारतीय बहुत भाग्यशाली है, कृष्ण उनके नजदीक है, सामने है, लेकिन उनका दुर्भाग्य क्या है कि उन्होंने कृष्ण की ओर, भगवान की ओर अपनी पीठ की है, और उनकी आंखें अमेरिका की तरफ है। किसकी तरफ है? अमेरिका की तरफ। और अमेरिकन लोग बहुत दूर है, विदेशी लोग, लेकिन उनका फेस किसकी तरफ है? कृष्ण की ओर। तो वह निश्चित भगवान की ओर पहुंचेंगे। हम नजदीक होते हुए भी भगवान के ओर हमने बैक कर दी है और फेसिंग माया की ओर है, तो हमारी ये दयनीय स्थिति है। इसलिए वास्तविक कोई आशीर्वाद या वास्तविक कोई ब्लेसिंग्स है तो वो यही है कि उन्नत जो भगवान के भक्त हैं उनसे श्रवण करना और उनके आदेशों को पालन करना, क्योंकि वो कुछ और चाहते नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों को देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ बोला गया है भागवतम के 11वें स्कंद में। उन्होंने कहा देवताएं स्वार्थी हैं, देवतागण इंद्र चंद्र वरुण गणेश दुर्गा आदि, उनको जब तक आप पूजा करो उसके बदले में आपको कुछ देते रहेंगे। इंद्र की पूजा ब्रजवासियों ने कितने साल तक की, लेकिन एक बार नहीं की, एक ही बार तो उन्होंने की आतंक मचाना शुरू किया। सोचो एक बार न करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंद्र से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, पूरे सोचा अरे ये छोटे से गांव के इतने सारे इनको कहां से, छोटे से बच्चे से ये सब लोग सीख रहे हैं, तो उन्होंने आतंक किया इतना बड़ा कि ब्रजवासियों को या ब्रज को विनष्ट करना चाह रहा था। तो मतलब वो कैसे है देवताओं की स्थिति, भागवत कहता है व्यापार बिजनेस, आप कुछ दो उसके बदले में कुछ लो, तभी संबंध उचित है, लेकिन भगवान के भक्तों का नहीं। वो चाहे आप उनको दंडित भी करो तो भी उनकी करुणा आपके ऊपर उतनी है। तो ये उनके भक्तों का, भगवान के भक्तों का ये विशेष गुण है, क्योंकि देवता भगवान के भक्त ही है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। कैसे भक्त है? मिश्र भक्त है। मतलब कुछ जीव भगवान का भक्ति भी करना चाहते हैं और कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं या सुख उपभोग भी करना चाहते हैं। तो भगवान फिर उनको ये पद देते हैं कि ठीक है, थोड़ी कंट्रोल की भावना है, चलो भजन भी करो और थोड़ा बॉस भी बने रहो। तो मिश्र भक्त है, मतलब वो सुख उपभोग भी चाहते हैं और भगवत सेवा भी करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या चाहते हैं? केवल 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 भगवान की सेवा, और कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वयि। तो ये श्लोक केवल शुद्ध भक्तों के लक्षणों को वर्णित करता है ऐसे नहीं, बल्कि हमें प्रेरित करता है कि मुझे भी क्या करने हैं, इन गुणों का विकास अपने जीवन में करना है, मुझे भी भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। तो प्रभुपाद के पास लंदन में वो सारे भारतीय आए और वहां
प्रभुपाद ने पूछा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा मैं पीएचडी हूँ, ऐसे बहुत सारे यूथ्स हैं, उन्होंने बहुत सारे अपनी अपनी डिग्रियां बताई। तो प्रभुपाद ने कहा हम इन सब डिग्रीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो एक ही चीज में इंटरेस्टेड है, वो क्या है, भक्त। कि भक्त बनना ये सबसे बड़ी डिग्री है, और भगवान के प्रिय बनना मीन्स क्या, भक्त बनना। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाती, भक्त बनकर ही मुझे जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम इस संसार में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बनना चाहते। माता पिता गर्व से कहते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, क्या क्या बनाना है, लेकिन कोई माता पिता थोड़ा सा भी सोचते हैं कि मेरे बेटे को ना भगवान का भक्त बनाना है, कभी थॉट आता है नहीं। इसी कारण से सारे आसुर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इसलिए बच्चे बड़े होते हैं माता पिता के मुंह में लात मार के उनको भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, अमेरिका चले जाते हैं, और यहाँ मर भी जाते तो भी कोई देखने उनको नहीं आता। तो ये सब किसने उनको दिया है कल्चर, हमने दिया है, गलती किसकी है, हमारी है। तो जब हम ये नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, हाँ, तो कहते ना कि कर्मा की रिएक्शंस, एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन। आप जोर से इसमें मारो तो उतनी मात्रा को आपको भी लगेगा। तो वही है, जब हम ये एजुकेशन, ये कल्चर अपने बच्चों को नहीं देते, ये भावना हृदय में नहीं रखते कि मेरे बच्चे को भी कृष्ण भक्ति देने, उनको भक्त बनाना है, बाकी शिक्षा तो अपने आप आती रहेगी उसके जीवन में, लेकिन पहला कंसर्न, पहला केयर ये होना चाहिए कि मुझे अपने जो बालक है उनको भगवान की शिक्षा प्रदान करनी है। तो आगे चलकर भगवान की के द्वारा मार्गदर्शित होकर वो स्वाभाविक रूप से सबकी केयर करेंगे। हाँ, तो इसलिए हमें भक्त बनने के लिए तत्पर होना चाहिए, और भक्त के लक्षण है जो अपना चित्त भगवान में लगाने का प्रयास करता है, और भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, और भक्तों से प्रीति का संबंध रखता है, और एक दूसरे को क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, बोध करता है, और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब भक्त आपस में मिलते हैं वो निरंतर भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में, भगवान का ये जो संदेश है दूसरों तक कैसे आगे पहुंचाया जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं, हाँ, तो और फिर वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक से कई सारी शिक्षाएं हैं, हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वेंसडे तक आप इस श्लोक याद करके आइए, दसवें अध्याय का नौवां श्लोक, ये आपके लिए होमवर्क है, याद करके आना है। क्या करके आना है, याद करके आना है, चारों याद करने हैं, लेकिन अगले वेंसडे के लिए आप नौवां श्लोक याद करिए, बहुत सरल है, और एक एक शब्द एक एक हफ्ता बोला जा सकता है, एक एक जो शब्द है इस श्लोक का, मद चित्ता, मद गत प्राणा, बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये सूत्र है, आनंद प्राप्ति का सूत्र है। क्या क्या सूत्र है, कि हमारा चित्त भगवान में होगा और भगवान के लिए हम समर्पित होंगे, और दूसरों को भी कृष्ण भावना का बोध हम देते रहेंगे, और जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ निरंतर कृष्ण कथा का आदान प्रदान करेंगे, तो हम अपने जीवन में दिव्य शाश्वत आनंद और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अन्यथा सुख शांति आनंद हमारे लिए केवल क्या है, स्वप्न है, स्वप्न में हम सुखी होते रहेंगे। सपने में आता है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, सुखी रहता है, लेकिन जैसे दिन खुलता है पता चलता है अरे मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट जाना है, मेट्रो से नौकरी के लिए जाना है, हाँ, तो आग खुलती है। तो वैसे सिचुएशन है। तो मैं सोच रहा था हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करूं, लेकिन अगली बार हम हरिदास ठाकुर का भी जीवन है, तो वो ये श्लोक के आपके उदाहरण है हरिदास ठाकुर, तो उनकी चर्चा फ्यूचर में कभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
किसी का कोई समीक्षा या प्रश्न हो तो एक दो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ विराम देते हैं।